अनादि है, शिव अनंत है।
ओम शांति। सर्वप्रथम आज समस्त विश्व की सर्व सदा कल्याणकारी दुखहर्ता सुखकर्ता परम प्रिय परम पिता परमात्मा ज्योतिर्बिंदु परम धाम निवासी निराकार सदा शिव बाबा की प्रिय संतान आध्यात्मिक शिव बाबा की संतान सर्व आत्माएं तथा विशेष शिव भक्तों को आज महाशिवरात्रि के पर्व पर और महा शिव जयंती के पवित्र पर्व पर बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो। परमपिता परमात्मा जिसको भगवान अल्लाह ईश्वर खुदा प्रभु सभी अपने अपने धर्म में जाति में भाषा में और अपने दिल के दुख दर्द को लेकर जिसको जितना उस प्रभु से प्यार है उस प्रभु को याद करते हैं, भक्ति करते हैं, नाना प्रकार की साधनाएं करते हैं, परंतु इतना निश्चित है कि संसार के अंदर जो हमें कोई भी मनुष्य आत्मा दे नहीं सकती वह हमें प्रभु के द्वारा प्राप्त होता है। जो दुख, जो अशांति, जो समस्या का समाधान जो कोई मिटा नहीं सकता लेकिन प्रभु के द्वारा वह दुख मिटता है, अशांति खत्म होती है और समस्या का समाधान भी प्राप्त हो जाता है। यही कारण है कि सर्व मनुष्य आत्माएं दुख अशांति और समस्या के समय पर भले उसे नहीं भी जानते परंतु उसे याद जरूर करते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि उस प्रभु को तुम मात पिता हम बालक तेरे तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे या फिर त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव या फिर शास्त्रों के द्वारा परमपिता परमात्मा की बड़ी भारी महिमा जो सर्वोच्च महिमा है जो कोई भी नहीं कर सकता वह ज्ञान की अधिष्ठात्री माँ शारदा माँ सरस्वती जो कि विद्या की देवी है वह अपने शब्दों में करती है कि असित गिरिशम सात कज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरुवर शाखा लेखिनी पत्र मुरवी लिखती यदि गृहित्वाम शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम हे ईश पारम न याति। जिसका अर्थ संक्षिप्त में यही है कि हे प्रभु यदि मैं पूरे धरती को कागज बना दूं, समुद्र पहाड़ को घोलकर स्याही बना लूं और जितनी भी पेड़ की डालियां हैं उनकी कलमें बना लूं, और मैं यदि तेरे गुणगान लिखने बैठूं, तेरी महिमा लिखने बैठूं, तो तेरी महिमा इतनी अपरंपार है कि मैं लिखने में असमर्थ रहती हूं। ठीक इसी प्रकार हम मनुष्य आत्माएं भी उस परमपिता परमात्मा को जानती नहीं, परंतु हां मानते जरूर हैं। क्या मानते हैं? यही मानते हैं कि जो कोई भी मनुष्य नहीं कर सकेगा वो प्रभु करेगा। भले अल्पकाल की प्राप्ति के लिए अनेकानेक महान आत्माओं के पास अपनी समस्या, अपने दुख, अपने दर्द, अपनी अशांति लेकर के मनुष्य जाते हैं, उनके द्वारा अल्पकाल का मार्गदर्शन होता भी है, अल्पकाल का सुख, शांति, आनंद मिल भी जाता है। यहां तक कि इंस्टेंट फायदा भी होता है, तुरंत वो कोई ऐसे चमत्कार भी दिखाते हैं जिस चमत्कार से आत्मा अति प्रभावित होकर उसे नमस्कार कर लेती है, और नमस्कार करती तो है परंतु जो चमत्कारी स्वयं परमपिता परमात्मा है उसे वह भूल जाती है, और वह मनुष्य आत्मा जिसको महान आत्मा कहें या तो जो महान आत्मा बनने का यत्न कर रही है, ऐसी आत्मा के द्वारा चमत्कार को पाकर के वो उसी को अपना भगवान मान लेती है, समझ लेती है और उसे ही याद करती है। तो आज हम महाशिवरात्रि, महा शिव जयंती के पर्व पर कुछ सुनने को बैठे हैं, तो यही सोच चलता है कि आखिर भी उस परम पिता परमात्मा की यह रात्रि और जयंती क्यों मनाई जाती है, जबकि हम उस पिता परमात्मा को यथार्थ रीति से जानते भी नहीं, फिर भी उसको याद करते हैं, फिर भी उससे संबंध जोड़ते हैं, फिर भी उसके दर्शन के लिए आत्मा बड़ी प्यासी बनी रहती है, फिर भी उससे प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार की साधना, तप आदि आदि करते हैं। जैसे आज महाशिवरात्रि, महाशिव जयंती का पर्व होने के कारण अगली रात्रि 12 बजे से लेकर के मंदिरों के अंदर शिव स्त्रोत गाए जाते हैं, ओम नमः शिवाय का कंटिन्यू अखंड जपा जाप चलता है, कई व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, और रात्रि को 12 बजे जहां जहां शिव मंदिर हैं वहां जाकर के दर्शन करके और अपने मन की यह इच्छा इस प्रकार पूरी करते हैं जो उन्होंने सुना हुआ है, जो किसी ने उन्हें कहा हुआ है कि यदि हम जिस समय परमपिता परमात्मा का दिव्य अवतरण अर्थात दिव्य जन्म होता है, ऐसी वह रात्रि जिस रात्रि में उसकी जयंती अर्थात उसका जन्म, उस समय यदि हम उस परमपिता परमात्मा को याद करते हैं या उनके मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, धूप दीप जलाते हैं और बड़ी श्रद्धा के साथ यदि हम कुछ मांगते हैं तो हमें उनके द्वारा अवश्य ही वरदान की प्राप्ति होती है, या हमारी जो इच्छा है, हमारी जो आशा उनके प्रति है, कि भाई ये प्राप्ति उनके द्वारा मुझे होगी, तो वो अवश्य होती है। मनोवांछित, मनोकामना वह अवश्य ही पूर्ण करते हैं। और ये समय सिर्फ रात्रि का कुछ पल का ही नहीं होता, लेकिन एक रात्रि की 12 बजे से लेकर के दूसरी रात्रि के 12 बजे तक यह परमपिता परमात्मा से यदि हम किस भी समय उसको याद करते हैं तो हमें उनके द्वारा आशीर्वाद या फिर वरदान या फिर प्रार्थना का फल हमें अवश्य प्राप्त होता है। और इसी कारण से जब शिवरात्रि आती है, शिव जयंती आती है, या फिर शिव की विशेष पूजा का दिन सोमवार, सोम रस माना ज्ञानामृत पिलाने वाले, अमृत पिलाकर अमर बनाने वाले उस परम पिता परमात्मा को विशेष रूप से याद किया जाता है। तो क्या परम पिता परमात्मा रात्रि में आए? तो ये कौन सी रात्रि है जिस रात्रि का इतना गायन पूजन हो गया, जो इस रात्रि को महाशिव रात्रि के नाम से, एक त्योहार के नाम से गाई जाती है, पूजी जाती है? उसको नाम ही मिला उस रात्रि को महाशिव रात्रि। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, सदा शिव माना सदैव ही कल्याण करने वाले, परंतु ये तो है महाशिवरात्रि। महा माना महान ते महान, तो सारी दुनिया में जितने भी श्रेष्ठ कर्म होते हैं, इन सभी श्रेष्ठ कर्मों से भी श्रेष्ठ कर्म के द्वारा सर्व आत्माओं को सुख शांति देने वाले, उनका दुख हरने वाले, सर्व का कल्याण करने वाले सदा शिव की यह रात्रि, माना शिव का ही नाम इस रात्रि को मिला हुआ है। तो ये रात्रि कब आती है? क्या उस रात्रि के समय हम थे? क्या हम चाहते हैं कि उस रात्रि में हम हो? इसलिए ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि यदि हम उस रात्रि में होंगे या हैं, तो अवश्य परमपिता परमात्मा के अवतरण के विषय में हमें शुभ संदेश प्राप्त होगा, हमें उसके विषय में जानकारी मिलेगी कि जिसको हम सिर्फ इस जन्म में नहीं लेकिन अनेक जन्मों से हम जिसको याद करते आए हैं, तो हमारी उस प्रभु दर्शन की आश, प्रभु मिलन की प्यास जब पूरी होती है या होंगी, तो ये रात्रि, तो रात्रि में प्रभु का आना क्यों? तो प्रभु ने हम बच्चों से वायदा किया है, इसलिए हम इस रात्रि को मनाकर उस प्रभु को याद करते हैं, उसका स्मरण करते हैं। क्या वायदा किया है? श्रीमद् भगवत गीता में हम सभी सुनते हैं, पढ़ते हैं और कईयों को कई बार सुनाते भी हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य, ये प्रभु का वायदा हम बच्चों के प्रति, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब इस सृष्टि पर धर्म की हानि होगी, अधर्म का साम्राज्य होगा, तब अधर्म के नाश हेतु और धर्म की स्थापना हेतु और साधु पुरुषों की रक्षा हेतु, साधु माना तिलक वाले दाढ़ी पहनने, दाढ़ी बड़ी हुई गेरुए कपड़े पहनने वाले, या बहुत बड़े बड़े ऊपर झुड़े जिनके बन चुके हैं, ऐसे लोगों की बात नहीं हो रही है। साधु पुरुष माना, सद्गुणी, नैतिक चारित्र की ऊंचाई वाली मनुष्य आत्माएं जो सर्व को सुख और शांति पहुंचाती है, ऐसे अच्छे लोग, पुण्यशाली लोग, पवित्र श्रेष्ठ कर्म करने वाले लोग, सत्य पर चलने वाले लोग, ऐसों को, ऐसों की रक्षा करने हेतु परमात्मा कहते हैं मैं आता हूं। और आकर के हम बच्चों को फिर क्या कहते हैं? हम बड़े दुखी हैं, अशांत हैं, हम विषय विकारों में फंस करके रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, निराश हैं, उदास हैं। ऐसा भी लगता है कभी कभी कि संसार में कोई नहीं जो सभी के दुखों को दूर करे, या मेरा भी कोई दुख आकर के दूर करे। तो प्रभु ने क्या कहा सामने? हमारे दुख प्रभु जब सुनता है, वो पिता है, वो माँ है, सखा है, बंधु है, परम शिक्षक है, परम सतगुरु है, वो हमारी जीवन नैया को पार ले जाने वाला है, हमारी बिगड़ी को बनाने वाला है, हमारी बिगड़ी तकदीर को संवारने वाला है। कहता है, हे मेरे लाडले बच्चे, मेरे मीठे बच्चे, सिर्फ एक काम करो, तुम मेरी स्मृति में रहो, तुम मुझे जानो, जान करके मानो, और मानने के पश्चात मेरी स्मृति में रहो। यदि तुम मेरी स्मृति में रहेंगे तो मेरी स्मृति इतनी शक्तिशाली, सामर्थ्य वाली है, जो अहम त्वाम सर्व पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि मम सुच, मैं तुझे सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। लेकिन कब? जब हम उसी को याद करेंगे, उसको जान करके, मान करके, स्वीकार करके। अभी हमने बिना जाने भी उसको स्वीकार किया है कि हाँ प्रभु है, भले ये नहीं पता वो कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, बस हमें जो जो भी हमें परंपरागत हमारे साधु संत महात्मा गुरु ऋषि मुनि या हमारे शास्त्रों ने हमें जो बताया, हमने प्रभु का वैसा अनुमान से वो रूप कल्पना के अंदर खड़ा कर दिया, या फिर हमें जो गाथाएं, धार्मिक गाथाएं सुनाई गई कि भाई श्री राम आए, श्री कृष्ण आए, गौतम आए, बुद्ध आए, क्राइस्ट आए, या देवियां आई, या अनेक अन्य देवताएं, देवियां इस धरती पर जब भी आए, तो वो सभी ने आकर के दुख दर्द दूर किए। तो हमें कोई ना कोई मिसाल बताए जाते हैं कि फला फलाना फलाना असुरों का नाश किया, यहां नरक में सृष्टि थी, नरक में वातावरण था, उसका आकर के प्रभु ने परिवर्तन किया। तो हम अपना सोचें कि क्या हम ऐसी अधर्मी दुनिया, नैतिक चारित्र्य जहां हीन हो चुका है, जहां नैतिक चारित्र्य का मूल्य खत्म हो चुका है, जहां पर पापाचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, दुराचार, प्रत्येक क्षेत्र के अंदर विषय विकार, लोभ लालच, झूठ कपट, ठगी, असत्य जहां पर छा चुका है, ऐसी घोर अंधियारी रात्रि, क्या मेरे मीठे भाइयों और बहनों आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये कितनी घोर कलयुग एक तो, और उसमें इतनी अशांतियां, दुख और दुराचार, दुष्वृत्तियां, जहां पर संबंधों की चरम सीमा भी सभी संबंधियों ने, स्नेहियों ने तोड़ डाली है, रक्षक भी जहां भक्षक बने हैं, जन्मदाता भी जहां अपने उस ऊंच परम पद को भुला चुके हैं, अर्थात पिता पुत्री पर बलात्कार करता है, माँ के ऊपर पुत्र बलात्कार करता है, बहन के ऊपर भाई बलात्कार करता है, बहू के ऊपर ससुर बलात्कार करता है, ऐसे और भी चाचा, मामा, नाना, दादा, कई ऐसे किस्से रोज रोज आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, और कईयों के द्वारा इसका वर्णन सुनते जाते हैं। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि ये वही महाभारत काल है, जब महाभारत काल पर ऐसी ही घोर अंधियारी रात्रि छाई हुई थी, ऐसे ही दुख के दर्द के बादल उमड़ घुमड़ कर आए थे, और प्रत्येक आत्माओं ने, और विशेष उन नारियों ने, महिलाओं ने, बहनों ने अपनी लाज बचाने के लिए प्रभु को बड़ी दिल से, हृदय से, इतनी आतंकता से प्रभु को पुकारा, हे प्रभु लाज बचाओ, अब कोई नहीं रहा। भरी सभा के बीच पांच पांच पति, माना रक्षा करने वाले जो स्नेही संबंधी उनके सामने, अनेका अनेक गुरुओं के सामने और अनेक लोगों के सामने, जब भारत की, चाहे विश्व की, द्रौपदी, सीता, सलमा सबकी बेहया, बेशर्म जब लाज लूटी जा रही है, क्या नहीं लगता आपको कि अब प्रभु को आना चाहिए? क्या नहीं लगता ऐसा कि प्रभु सृष्टि पर अब आकर के और इस अधर्मी दुनिया का परिवर्तन करे? तो आज हम आपको एक खुशखबरी सुनाते हैं, मानो न मानो आपकी मर्जी है, क्योंकि आप चाहते हैं प्रभु आए, परंतु आपने कभी ये भी सोचा कि प्रभु आवे तो किस में आवे? क्या हमने जो आज तक सुन रखा है, पढ़ रखा है कि वारा अवतार में आए, नृसि में आए, या फिर बटुक रूप में आए, भिन्न भिन्न मत्स्य रूप में आए, कई रूप में आए, यानी प्रभु को मनुष्य शरीर या देवता शरीर नहीं मिला, जो प्रभु ने जाकर के इन जानवरों का, प्राणियों का अवतार धारण करने के लिए आधार लिया। प्रभु कहते नहीं, मैं प्रकृति के अधीन नहीं हूं, मैं प्रकृति को अधीन करके आता हूं, मैं मालिक हूं। तो गीता में स्पष्ट बताया है प्रभु ने, हम बच्चों को स्पष्ट समझ में आवे कि मैं जब आता हूं तो साधारण वृद्ध मनुष्य के तन में आता हूं, जिसके अनेक जन्मों के अंतिम समय की अंतिम अवस्था होती है, तब मैं सृष्टि पर उस तन में प्रविष्ट करता हूं। किस लिए? धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए। लेकिन कौन सा धर्म? जो वर्तमान अनेक धर्म चल रहे हैं वो नहीं, वो तो चल ही रहे हैं, लेकिन जो सत्य धर्म, प्रभु तो कुछ नया काम करेंगे ना आकर, जो मनुष्य कर रहा है वो प्रभु नहीं करता। तो सत्य धर्म की स्थापना अर्थ सृष्टि पर आए हैं, अब उसको पहचानना, जानना, मानना, स्वीकार करना, ये आपका काम है। हम आपको हार्दिक आमंत्रित करते हैं कि हमने उसको जाना है, माना है, पहचाना है, न सिर्फ इतना, हमने उसको पाया भी है और उसको पा करके ये अनुभूति में चल रहे हैं कि पाना था वो पा लिया, अब काम कुछ बाकी ना रहा। क्योंकि प्रभु को पाना माना सर्व प्राप्तियां होना, तो वो परमपिता परमात्मा शिव जिसका आज आप बड़ा जन्मदिन मना रहे हैं, रात्रि को जाकर के उसका पूजन कर रहे हैं, जिसको याद कर रहे हैं, वो आपको पुकार रहा है, वह आपको कह रहा है मेरे लिए मीठे लाडले बच्चों, अब ढूंढना बंद करो, ये पूजन भी बंद करो, अब मैं खुद आया हूँ, आपके सामने प्रत्यक्ष हुआ हूँ। लेकिन उसके लिए आपको जहाँ वो प्रत्यक्ष हुए हैं वहाँ उसके पास जरूर आना होगा, क्योंकि अब वो आ चुका हमारे लिए, अब हमें जाने का कार्य करना होगा, तो हम उसको पहचाने, जाने और माने, फिर उसका स्वीकार भी करें। जब स्वीकार कर लेंगे तो आप भी हमारी तरह यही अनुभूति का गीत गाएंगे कि पाना था वो पा लिया, काम बाकी क्या रहा, वाह मेरे प्रभु वाह, तेरी लीला अपरम अपार है, तेरी लीला तेरी महिमा अपरम अपार है। तो इस प्रकार आज की शिव जयंती मनाएं, शिवरात्रि मनाएं, कि उसे जानने के लिए भक्ति मार्ग में ढूंढा, अब ये ढूंढो कि इनका परिचय कहाँ प्राप्त होगा, कहाँ हमको उनकी एड्रेस मिलेगी, जो हम अपने बिछड़े हुए पिता से फिर मंगल मिलन मना सकेंगे। ओम शांति, ओम शांति।